बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यार में दादियों के समा जाइए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। भाग्य से दैवी परिवार प्यारा मिला, भाग्य से दैवी परिवार प्यारा मिला, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। निराकार आकार साकार का प्यार सब दादियां हम पे बरसा रही, प्रभु मिलन की लगन में मगन देख कर दिल ही दिल दादियां कितनी हर्षा रही, तपती जलती हुई राहों को छोड़कर शीतल शीतल से आंचल में आ जाइए, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। सबको शुभ कामनाएं हम देते चले, सबके दिल की दुआएं हम लेते चले, याद और सेवा के ही अब संकल्प हो, दिल से बाबा ही बाबा हम कहते चले, संगम युग का समय कितना अनमोल है, दादी जी संग सफल इसको कर जाइए, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यार में दादियों के समा जाइए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यारा बाबा मिला।
ओम शांति। एक व्यक्ति दिन रात केवल घड़ियों के ही बारे में सोचता था, दिन रात यही सोचता था कौन कौन सी घड़ियां संसार में है, क्लॉक वॉच, हर प्रकार की घड़ी, डिजिटल वॉच, अलार्म वॉच, दादी की घड़ी, दादा की घड़ी, छोटी घड़ी, बड़ी घड़ी, दिन रात केवल एक ही चिंतन, दिन रात केवल घड़ी की टिक 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 उसको सुनाई देती थी, उसे और कुछ दूसरा सूझता ही नहीं था, और जो भी घड़ी नई दिखाई देती थी वो उसको ले लेता था, खरीद लेता था, और घड़ियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उसने अपना एक अलग से स्टोर हाउस बना दिया जिसमें केवल घड़ी ही घड़ी, छोटी बड़ी हर प्रकार की, हर डिजाइन की, हर देश की, हर जगह की, और जब भी उस स्टोर हाउस में वो अपनी नई घड़ी लेकर जाता था, दरवाजा खोलता, अंदर जाता, फिर लॉक करता, कहीं कोई देख ना ले कि मेरे पास नई घड़ी आ गई है। पर जब भी जाता था, जैसे ही उस दरवाजे पर पहुंचता था, एक आवाज उसे आती थी, पीछे मुड़कर देखता था, कोई भी दिखाई नहीं देता था। वो आवाज उससे कहती थी कि स्वीडन की घड़ी तुम्हारे पास नहीं है, जापान वाली घड़ी अब तक तुम्हारे पास नहीं है। वो देखता था पीछे कौन है, कोई भी नहीं है। वो आवाज उससे कहती थी गरीब लोगों के पास तुमसे अधिक अच्छी घड़ी है। वो फिर पीछे देखता था, कोई नहीं। वो आवाज कहां से आती थी पता नहीं, पर जब भी अपनी घड़ी उस गोदान में रखने जाता था, उसे वो आवाज आती थी। वो आवाज कहती थी कि तुमने ये बहुत महंगी खरीदी, ये सस्ते में भी मिल सकती थी। और जब बहुत सारी घड़ियां उसके पास हो जाती है, एक दिन ऐसे ही नई घड़ी रखने वो उस स्टोर हाउस में पहुंचता है, दरवाजा जैसे ही खोलता है, देखता है एक लंबा सा व्यक्ति अंदर खड़ा है, और वो चिल्लाता है चोर चोर, और उस व्यक्ति के हाथ में एक घड़ी है। तो उसको तो पक्का हो जाता है ये अंदर घुसा है मेरी घड़ी चुराने के लिए। पर आश्चर्य, वो व्यक्ति तो घड़ी रख रहा है, चुरा नहीं रहा है। वो उसको पूछता है तुम कौन हो, वो कहता है मैं चोर हूं। पर उसकी जैसी ही आवाज सुनता है ये व्यक्ति, उसकी आवाज थोड़ी जानी पहचानी सी है, वो व्यक्ति कहता है क्या तुमने मेरी आवाज पहचानी कि नहीं पहचानी। वो तो कहता है पहचान सी लग रही है थोड़ी थोड़ी। वो कहता है तुमने तो कई बार सुनी होगी ना, वो मैं ही था जो तुमको कहता था स्वीडन की घड़ी तुम्हारे पास नहीं है, जापान की घड़ी तुम्हारे पास नहीं है, गरीब लोगों के पास तुमसे अच्छी घड़ियां है, इससे सस्ते में मिल जाती थी घड़ी, तुमने इतनी महंगी क्यों खरीदी। वो कहता है हाँ बस यही वो आवाज है, तुम ही तो थे वो, और कहां रहते हो और दिखते नहीं, आज कैसे दिखाई दिए, आज क्या चोरी करने आए हो। वो कहता है चोरी नहीं करने आया, मैं तो घड़ी रखने आया हूं, फिर तुम चोर कैसे। वो कहता है मैं चोर हूं, बट आई एम द थीफ ऑफ योर कंटेंटमेंट। मैं चोर किसका हूं, तुम्हारे संतोष का मैं चोर हूं, जो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है और जो बार बार क्या कहता है वो वाली घड़ी तुम्हारे पास नहीं है। वो क्या कहता है, वो वाली चीज तुम्हारे पास नहीं है, दूसरों के पास है, तुम्हारे पास कब होगी। शायद हर मस्तिष्क में ऐसा चोर बैठा हुआ है जो कि अंदर से धक्के लगाते रहता है, आवाज देते रहता है कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, बहुत सुंदर। ब्राह्मणों में असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति, अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता, फुल स्टॉप। भगवान के महावाक्य है, ब्राह्मणों में असंतुष्टता का कारण क्या है, अप्राप्ति, और अप्राप्ति का भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म कारण क्या है, अपवित्रता। तो आज बाबा ने संतुष्टता की कुछ बातें बताई, असंतुष्ट रहने के चार कारण और संतुष्टता की पांच बातें। कौन किसको देख रहा है, दिलाराम बाप किसको देख रहा है, स्नेही बच्चों को, रूहों को, मायाजीत परिवार को देख रहा है, किसको देख रहा है, चैतन्य मूर्तियों को देख रहा है। किसको देख रहा है? चैतन्य म्यूजियम को देख रहा है, जहां पर कौन सी आत्माओं का म्यूजियम है? ये माया जीत आत्माओं का चैतन्य म्यूजियम। किस लिए आया है? दिल की लेन देन। किस लिए आया है? दिल की रूह रिहान। किस लिए आया है? दिल का हालचाल सुनाने। दिल का हालचाल सुनाने आया है, मिलने आया है, रूह रुहान करने आया है। और क्या चुराने आया है? दिल को चुराने या असंतुष्टता को चुराने? तो बाबा ने कहा, तुमने एक बहुत ही अद्भुत काम कर दिया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। कौन सा? अजीबोगरीब हैरतअंगेज काम कर दिया है। कौन सा? जो वाणी से परे है उसको खींच के किसने लाया? वाणी में किसने लाया? किस शक्ति ने लाया? स्नेह की शक्ति ने। जो निर्वाण में है उसको वाणी में ला लिया, और जो निर्बंधन है, जिसको दुनिया पुकारती है छुड़ाओ छुड़ाओ हमको बंधनों से, ऐसा जो निर्बंधन का सागर है, उस निर्बंधन को क्या कर दिया? बांध दिया। तो बड़ा कौन होता है, बांधने वाला या बनने वाला? तो हम बाप से बड़े हैं? जिसे संसार बांध नहीं सकता उसे हमने प्रेम से बांधा है, स्नेह से बांधा है, खींचा चला आया है। तो जो निर्वाण में है वो वाणी में आ गया, जो निर्बंधन है वो बंधन में आ गया। कितने अच्छे शब्द है बाबा के। असंतुष्टता के प्रकार, किस किस बातों में असंतुष्ट है ब्राह्मण आत्माएं? बाबा विदेशियों से मिल रहे, जिनकी लगन बहुत तेज है, जिनकी पहचान की आंख बहुत तेज है। यहां वाले नहीं पहचान पाए, वहां वालों ने पहचान लिया। ऐसे विदेशी बच्चों से बाबा मिलने आए, और क्या टाइटल दिया उनको? तुम सब कौन हो? संतुष्ट मणियां हो। बाप का जो ताज है उसमें चमक रही मणि हो। भगवान के महावाक्य है, संतुष्ट मणियों का प्रकाश सारे विश्व में फैलता है। परंतु सदा संतुष्ट मणि हो, कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट, किसी स्थान में संतुष्ट किसी स्थान में असंतुष्ट, किसी समय में किसी परिस्थिति में संतुष्ट और किसी परिस्थिति में असंतुष्ट, ऐसे तो नहीं हो, सदा संतुष्ट हो। चार कारण बताए असंतुष्टता के। पहला, स्वयं से असंतुष्ट है। दूसरों से, स्वयं के किसी संस्कार से या फिर वायुमंडल से, परिस्थितियों से। बाबा ने कहा सदा संतुष्ट मणि, अर्थात सदा संतुष्ट हर समय हर परिस्थिति में हर स्थान में, तीनों ही चीजें उसमें आनी चाहिए। कैसा भी स्थान हो संतुष्ट, कैसे भी परिस्थिति हो संतुष्ट, और कैसा भी समय हो, समय स्थान परिस्थिति तीन चीजें, तीनों में भी संतुष्ट। ब्राह्मण आत्माओं की असंतुष्टता का क्या कारण है? क्या क्या कारण हो सकते हैं? मुरली से थोड़ा बाहर क्या क्या कारण है? कम से कम 10 कारण है। पहला, जो बाबा हमेशा कहते हैं, अप्राप्ति, कुछ मिला नहीं इसलिए असंतुष्ट। दूसरा, इच्छा, इच्छाएं, हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला, और वर्तमान समय एक इच्छा सबसे ज्यादा है ब्राह्मणों में। कौन सी? एक ही है, खाना तो बहुत है, पीने का बहुत है, पैसों की इतनी चिंता नहीं है। किसकी चिंता है? मान और शान की। ये इच्छा ही असंतुष्ट करे। पद पोजिशन, तीसरा कंपटीशन, कंपैरिजन, तुलना करते हैं, हमारे पास ये है उनके पास वो है, हमें ये मिला उन्हें वो मिला, उनको ज्यादा मिला हमको कम मिला, कंपेयर, हर चीज में कंपैरिजन, और वो एक कारण है असंतुष्टता का। चौथा जेलसी, ईर्ष्या, कोई हमसे आगे जा रहा है, ईर्ष्या होती है, और ईर्ष्या को यदि न रोका गया तो बदले का भाव, दुर्भाव पैदा होता है, या फिर कोई हमसे असंतुष्ट है इसलिए हम असंतुष्ट है। हम कहते हैं ये व्यक्ति ठीक नहीं है, पर वो हो सकता है हमसे ठीक नहीं है बाकी सबसे ठीक है। प्रॉब्लम व्यक्ति का नहीं है, प्रॉब्लम हमारे हिसाब किताब का है उसके साथ। और ऐसा हो जाए तो क्या किया जाए, ये व्यक्ति हमसे ठीक से बात नहीं करता बाकी सबसे ठीक से बात करता है। माता कहती है कि ये बाकी सबका सुनता है मेरी नहीं सुनता, बस प्रॉब्लम व्यक्ति में नहीं है, प्रॉब्लम किसमें है, हिसाब किताब में। ऐसे समय क्या करना चाहिए, ऐसे समय क्या करना चाहिए। बाबा ने कभी कहा था सब कुछ कर लिया फिर भी कोई असंतुष्ट है, तुम अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ और उसके लिए शुभ भावनाएं रखो, बस अब और पीछे नहीं पड़ो। तुम अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ, शुभ भावनाएं रखो बस, क्योंकि सब कुछ करने के बाद में भी वो असंतुष्ट है या दुखी है या ठीक व्यवहार नहीं है, बाकी सबसे ठीक है हमसे ही ठीक नहीं है बस, तो क्या करना है, उसके पीछे पड़े रहना है। बस शुभ भावनाएं रखो, डिटैच, बहुत सूक्ष्म साइकोलॉजी है। तो पहला कारण अप्राप्ति, दूसरा कारण इच्छाएं, तीसरा कारण तुलना, चौथा कारण ईर्ष्या, पांचवा कारण माया को न पहचानना। आज की मुरली में भी आया है, उसकी हम चर्चा करेंगे। अगला कारण, छठवां कारण, जिसके वजह से आत्मा असंतुष्ट है, ड्रामा के राज को न समझना। हर सीन में कोई ना कोई राज छिपा है, शायद हम उस राज को न समझ पाए, इसीलिए अतृप्त है, असंतुष्ट है, बेचैनी है अंदर। आत्मा में विकार का आकर्षण कम है, बेचैनी है, स्थिरता नहीं है, और बेचैनी विकारों को खींचती है। बेचैनी वो सब करने को मजबूर कर देती है जो अन्यथा व्यक्ति नहीं करेगा, पर रेस्टलेस है वो, बेचैनी, वो खालीपन विकारों को आकर्षित करती है, और विकारों के वशीभूत होकर आत्मा विकर्म करती है, और विकर्म के बाद ब्राह्मण आत्मा को बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है, और पश्चाताप विकर्म का कुचक्र घूमना चालू होता है और उसमें से निकल नहीं पाती। सारी श्रीमत पता है फिर भी निकल नहीं पाती। माया को कम पहचानना और ड्रामा के राज को न जानना। अगला है बाबा से वियोग है, भगवान बहुत दूर चला गया है। जो भक्ति में अवस्था थी भगवान को खोजने की, वो ज्ञान में आए तो भगवान मिला, और लंबा समय चलने के बाद फिर खो गए। अब फिर से ढूंढना आरंभ करना है, कहां गया वो, कहां रहता है वो, करता क्या है, क्योंकि खो गया है। खोया वो नहीं, खोए हम है, वो तो वहीं खड़ा है। रोज रोज अमृत वेला मिस, या फिर कम पावरफुल, या फिर समय पर नहीं है। मुरली चल रही है पर चिंतन उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। दिनचर्या में व्यर्थ है। बाबा खो गया, दूर चला गया। अगला कारण है स्वार्थ। स्वार्थ, सेल्फिशनेस, केवल मेरे लिए, केवल मेरा नाम हो जाए, स्वार्थ। अगला कारण है समर्पण की कमी, अप्राप्ति, असंतुष्टता के कारण है। शायद समर्पण पूर्ण नहीं है। बाबा ने मुरली में क्या कहा, सरेंडर के लिए, तुम सरेंडर हो जाओ तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। ये सरेंडर सेरेमनी मनाओ। वहां जाने के बाद पत्र मत लिखना माया आ गई, खुशखबरी लिखना। कौन सी खुशखबरी लिखेंगे? ओके, आज की मुरली में तो ये कल सुबह लिखना, खुद ही खुशखबरी बाबा को। और दसवां कारण, श्रीमत का उल्लंघन। श्रीमत का उल्लंघन, आज्ञा का उल्लंघन। सारे दिन भर में श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, अपने आप असंतुष्ट आएगी शाम में। पता था नहीं करना है, फिर भी कर दिया। पता था ये नहीं होना चाहिए, फिर भी हो गया। असंतुष्ट, तो असंतुष्टता के ऐसे 10 मुख्य कारण है। ब्राह्मण परिवार में, फिर क्या क्या बातें कही आज की मुरली में संतुष्टता के बारे में? मुख्य 5 बातें कही है। सबसे पहले संतुष्टता क्या है, विशेषता है। संतुष्टता क्या है, खजाना है। संतुष्टता क्या है, गुण है। संतुष्टता क्या है, श्रृंगार है। 4 बातें बताई। संतुष्टता एक गुण है, संतुष्टता एक श्रृंगार है जिससे श्रृंगारित रहना है, संतुष्टता एक विशेषता है, और संतुष्टता क्या है, एक खजाना है। तो ये 4 चीजें। फर्स्ट पॉइंट, संतुष्टता। इस श्रृंगार से स्वयं को श्रृंगारना है। गीत में सुना, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए। ये भाव, सब मिला है। दूसरा, संतुष्टता परिवर्तन का दर्पण है। हम परिवर्तित हो जाएंगे, हमको देखकर दूसरे परिवर्तित हो जाएंगे। संतुष्ट अर्थात सदा खुश, दुख नहीं है, दर्द की अवस्था नहीं है, गम की अवस्था नहीं है, कोई पश्चाताप की अवस्था नहीं है, निरंतर आंतरिक खुशी है, वो संतुष्टता की अवस्था है। जैसे पहले भी कभी सुनाया था, विदेशी आता है, देखता है मंदिर बन रहा है, पहले से पूछता है मजदूर से, क्या कर रहे हो? वो कहता है, देखते नहीं क्या कर रहे, पत्थर तोड़ रहा हूं, कठोर पत्थर। क्रोधित है। दूसरे से पूछता है, तुम क्या करते हो? वो कहता है, आजीविका कमा रहा हूं, पत्नी है, बच्चे हैं, कौन संभालेगा उनको, पेट भर रहा हूं। तीसरे से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? वो झूम रहा है, वो गा रहा है, वो डांस कर रहा है। वो कहता है, मैं भगवान के लिए मंदिर बना रहा हूं। एक ही काम है, 3 लोग कर रहे पर अलग अलग कर रहे। हम क्या कर रहे हैं अमृत वेला? पत्थर तोड़ रहे हैं, कमाई कर रहे हैं कि गा रहे हैं? कोई कोई है जो पत्थर तोड़ रहे हैं, उठना पड़ता है, नहीं उठेंगे तो ये ब्राह्मण छोड़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे दिन भर, टॉन्ट। कुछ कुछ है जो कमाई कर रहे हैं, अरे कमाई करनी है, बाबा आया हुआ है, कमाओ और कमाओ। और तीसरे कुछ है, वो क्या कर रहे हैं? वो झूम रहे हैं, अमृत वेला गा रहे हैं, मुरली में कोई कोई बैठकर पत्थर तोड़ रहे हैं, कोई कोई कमाई कर रहे हैं, इनकम हो रही है ज्ञान की, और कोई कोई अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहे, भोजन करते कोई कोई पत्थर तोड़ रहे, आज वही खिचड़ी कड़ी, वही लौकी, कद्दू, पत्थर तोड़े जा रहे, कोई कोई आजीविका कमा रहे। अरे वाह, ब्रह्मा भोजन शक्ति भर रहे, इनकम हो रही है, और कोई कोई झूम रहे, नाच रहे, गा रहे, सारे दिन भर क्या कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं, कमाई कर रहा हूं कि झूम रहा हूं, नाच रहा हूं, भगवान का कार्य चालू है, हम काम कर रहे हैं, उसमें सेवा कर रहे हैं। वो विदेशी लौट जाता है, कई सालों के बाद वापस लौट के देखता है क्या हुआ उन तीनों का, तो देखता है पहला अभी भी पत्थर ही तोड़ रहा है, जो काम 10 साल पहले कर रहा था आज भी पत्थर ही तोड़ रहा है, उतना ही दुखी है जब तब था या ज्यादा। दूसरा दिखाई नहीं देता है, दूसरा कहां गया जो इनकम कर रहा था, कमाई कर रहा था, आज बड़ा साहूकार सेठ बन गया है पैसे कमाते कमाते। और तीसरे का क्या हाल हुआ, तीसरा आध्यात्मिक गुरु बन गया है, अब लोगों को मार्गदर्शन करता है, ज्ञान का खजाना लुटाता है, अनुभवों का खजाना लुटाता है, परामर्श देता है। तो पत्थर तोड़ने वाले क्या बन जाएंगे, वही पत्थर ही तोड़ते रहेंगे लास्ट तक, कमाई करने वाले साहूकार। तो संतुष्टता विशेषता है, संतुष्टता श्रृंगार है, संतुष्टता गुण है, संतुष्टता एक खजाना है फर्स्ट। दूसरा परिवर्तन का दर्पण है, तुम परिवर्तित हो जाओ दूसरे भी परिवर्तित हो जाएंगे, तुम्हारी संतुष्टता देखकर क्या कहेंगे, ये बहुत संतुष्ट है, ये बहुत खुश है, प्रभावित हो जाएंगे। ज्ञान हमने कुछ भी नहीं सुनाया, पर देखकर ही लगा कि इनके जीवन में कुछ है, ऐसा हमको बनना है बस। देखकर ही कोर्स पूरा हो गया, ये दूसरी बात। तीसरा संतुष्टता सहज सफलता का क्या है, साधन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहां काम करता है, जो संतुष्ट है अपने आप वही प्रकंपन इस विश्व में जा रहे हैं और वैसे ही वापस आ रहे हैं, क्योंकि जो कुछ हम भेजेंगे वही वापस आएगा। संतुष्टता भेज रहे हैं, अपने आप आत्माएं सहयोगी बनती जाएगी, सफलता आ जाएगी। तो सफलता, चौथा संतुष्टता और ब्राह्मण परिवार, ये चौथी बात है। इसमें और चार बातें, पहला जो संतुष्टता है वो सबका स्वतः ही क्या हो जाएगा, प्यारा, स्नेही, कहना नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे सहयोगी बनाओ, मुझे विशेष आत्माओं की लिस्ट में रखो, कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा, मुझे चांस दो, स्वतः ही स्नेही होगा। दूसरा गोल्डन चांसलर बन जाएगा, गोल्डन चांसलर। तीसरा स्वभाव संस्कार मिलाने लगेगा सबसे, और चौथा सबको उसके प्रति कैसा स्नेह होगा, दिल का स्नेह, ऊपर ऊपर वाला नहीं, दिखावे वाला नहीं, राजी करने वाला नहीं, दिल का स्नेह होगा, चाहे जानते हैं नहीं जानते हैं, पहचान ही संतुष्टता से है बाबा ने कहा। तो इस परिवार में संतुष्ट आत्मा के लिए चार बातें हो जाएगी, और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण और जिसका बहुत विस्तार किया है बाबा ने, जो संतुष्ट आत्मा है वो क्या है, माया जीत है। तो ऐसी पांच बातें कही है संतुष्टता के बारे में, इसको खजाने के रूप में स्वीकार करना है और इसको बढ़ाना है, और जो जो असंतुष्टता के कारण बताए, जेलसी है उसको हटाओ, यहां हर एक को वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए, हम देख रहे कहीं बहुत आगे जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, हर एक को वही मिल रहा है जो उसका भाग्य है। कंपैरिजन किस लिए, कंपैरिजन दुखी कर देती है आत्मा को, तुलना, उसके पास वो हमारे पास ये, उसके पास ऐसा मेरे पास ऐसा, दुखी हो जाते हैं। उसको ज्यादा मिल रहा है मुझे कम मिल रहा है। क्या कर्म के गति में कोई गलती हो सकती है? नहीं। फिर बाबा से मांगते हैं, बाबा ये कर दो। भगवान दो डिपार्टमेंट्स में कभी भी इंटरफियर नहीं करता है। कौन कौन से? कर्म का डिपार्टमेंट और दूसरा प्रकृति का डिपार्टमेंट। इस दो डिपार्टमेंट्स में कभी भी इंटरफियर नहीं करता है। जिसने जो किया है वही उसको मिलेगा, कोई भी नहीं छूट सकता इससे। तो असंतुष्टता के जितने कारण हैं, कुछ अप्राप्ति है, कोई ऐसी इच्छा है जो लौकिक वाली है, जो दुखी करने वाली है, ऐसी एक्सपेक्टेशन जो पूर्ण नहीं होने वाली है, स्वयं को मुक्त करना है उससे, क्योंकि वो इच्छा बहुत भटकाएगी, पागल कर देगी। समर्पण की शायद कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं स्वार्थ है शायद। जैसे एक छोटी बच्ची को उसका पिताजी ने 2 सिक्के दिए और कहा कि एक सिक्का भगवान का है, एक तुम्हारा है, जो मर्जी है करो तुम्हारे सिक्के से। वो जाती है, चॉकलेट खरीदती है, परंतु जाते जाते एक जो दूसरा सिक्का होता है नीचे गिर जाता है नाली के अंदर। वो भगवान की को कहती है, भगवान तुम्हारा सिक्का तो गया, मेरा मेरे हाथ में है, अब तुम देख लो तुम्हारा, जो गया वो उसका और जो हाथ में है वो मेरा। स्वार्थ है शायद, समर्पण की कमी है शायद, मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है सारी दिनचर्या में और पता ही नहीं चल रहा आत्मा को ये श्रीमत का उल्लंघन है, इसलिए तो बेचैनी है, इसलिए तो अतृप्ति है, अप्राप्ति है, असंतुष्टता का भाव है। निरंतर बुद्धि में क्या चल रहा है, इसके पास वो है, उसके पास, इसकी घड़ी अच्छी है, उसकी घड़ी अच्छी है, जापान की घड़ी अच्छी है, स्वीडन की घड़ी अच्छी है, मेरे पास वो घड़ी होनी चाहिए। आई एम द थीफ ऑफ योर कंटेंटमेंट, ये आवाज आती है उस चोर की, गूंजती रहती है। तो माया जीत के लिए क्या क्या कहा बाबा ने, बहुत अच्छी बातें कही है। माया जीत क्यों नहीं बन सकते? माया सबके पास आती है, परंतु कोई कोई घबरा जाते हैं, कोई कोई पहचान लेते हैं, संभल जाते हैं। जो घबराते हैं, घबराते क्यों है? क्योंकि पहचान नहीं पाते हैं और धोखा खा जाते हैं। उदाहरण सीता मैया कहां से कहां पहुंच गई, अशोक वाटिका से शोक वाटिका, योग से वियोग, पुकारने वाली बन गई, दूर हो गई। सीता के अपहरण की कहानी बड़ी सुंदर है। 7 कारण है जिस कारण से सीता शोक वाटिका पहुंच गई। पहला आकर्षण हुआ किसका? हिरण का। यहां पर भी स्वर्णिम मृग घूम रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, मोबाइल में तो बहुत ज्यादा घूमते हैं। पहला क्या हुआ? आकर्षण हुआ। दूसरा इच्छा हुई कि ये मुझे चाहिए। ये जो हिरण दिख रहा है ना, चलो आकर्षण तक भी ठीक है, आकर्षण हुआ आगे बढ़ गए, छूट गया, भूल गया, पर वहां नहीं रुकी वो। अब क्या है नेक्स्ट स्टेज? ये मुझे चाहिए, इच्छा। तीसरा जिद। समझाया उसे, नहीं नहीं ऐसा कुछ होता नहीं, उसने कहा नहीं मुझे चाहिए। जब इच्छा पूरी नहीं होती है, कोई समझाता है तो व्यक्ति क्या करता है? जिद करता है, मुझे चाहिए बस। चौथा कारण, मारीच की आवाज को किसकी आवाज समझ ली? राम की आवाज समझ ली। क्या चिल्ला रहा था वो? राम राम नहीं, लक्ष्मण लक्ष्मण। किसकी आवाज समझ ली? ये राम की आवाज है, ऐसा समझ लिया। वो आवाज राक्षस की थी, वो मनमत थी, वो परमत थी, वो जनमत थी, वो पाप था, कुछ और था, आवाज नहीं पहचान पाई। पांचवा कारण अविश्वास। लक्ष्मण ने समझाया कि नहीं, ये राम जी नहीं है। वो कहती है तुम मुझे सिखाते हो। वो कहता है राम को तो संकट आ ही नहीं सकता, वो तो सारे जगत का संकट दूर करने वाला है, ये लक्ष्मण का निश्चय है, परंतु जब विनाश सामने हो तो विवेक भस्म हो जाता है, विवेक खत्म हो जाता है, सोचने की बुद्धि खत्म हो जाती है। छठवां कारण रावण को न पहचान पाना। मुरली में क्या कहा बाबा ने, क्या समझा ये कौन है, ब्राह्मण है, क्या समझा ये किस एक भिखारी है, ये समझा, वो राक्षस है नहीं समझा। रावण सामने था पर उसको नहीं पहचान पाई। और सबसे बड़ा सातवां कारण सीता के अपहरण का, मर्यादा की लकीर। यहां तक भी ठीक था, यहां तक भी ठीक था, अभी विकर्म हुआ नहीं है, अभी संकल्पों के तल पर चल रहा है सब कुछ। पर जिस दिन मर्यादा की लकीर पार की, बस पुष्पक विमान से कहां पर पहुंच गई, शोक वाटिका, पुष्पक विमान खड़ा है उधर, मर्यादा तोड़ी, रावण वेटिंग में है उधर सैर कराने के लिए। किस दुनिया की, दुखों की दुनिया की, कांटों के जंगल की। आकर्षण, इच्छा, जिद, आवाज को न पहचानना, संशय, रावण को न पहचानना और मर्यादा का उल्लंघन करना। सारे दिन भर में सुबह से लेकर रात तक इन सातों में से कोई भी एक बात अगर होती है तो हम धीरे धीरे शोक वाटिका की ओर बढ़ रहे हैं। साकार मुरलियों में कहा है कि संकल्प तक आया तो ठीक है, कर्म में नहीं आना चाहिए, पर अव्यक्त वाणियों में, संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। आज की मुरली में रावण माया क्या करती है, जरा सा भी एक वेंटिलेटर, वेंटिलेटर खुला हो, रोशनदान झरोका, तो भी उसमें से वो प्रवेश करेगी। माया की परखने की आंख तुमसे ज्यादा तीखी है, उसका योग पावरफुल है, अष्ट शक्तियां फुल है उसके पास। परखने की शक्ति हमारी एक शक्ति है ना, उसकी शक्ति हमसे ज्यादा है। वो परख लेती कि इस समय ये वीक है, कमजोर है, इस स्थान में ये वीक है, इस परिस्थिति में ये वीक है, बाकी तो बहुत पावरफुल है, जा ही नहीं सकते उसके पास। पर हाँ, कमरे में पहुंचा है सारे दिन की सेवा करके, अभी कुछ किया जा सकता है, थोड़ा आक्रमण, कोई नहीं है, सेवा पूरी हो गई, क्लास भी सुन लिया, मुरली भी सुन ली, भोजन भी हो गया, अब बस लाइट बंद है, हाथ में केवल मोबाइल है, बस इसी में प्रवेश करती हूं अब। माया को जरा भी अवसर दिया कि वो पकड़ लेगी। इसलिए माया जीत बनने के लिए बाबा ने क्या कहा, सीता का अपहरण हुआ क्योंकि वो पहचान नहीं पाई, एक कारण बताया, और मर्यादा का उल्लंघन किया। माया की परखने की आग बहुत तेज है, और क्या किया जाए, कैसे परखा जाए माया को, श्रीमत और मर्यादा की लकीर के अंदर सदा। डाकुओं का भी उदाहरण दिया, बीज का भी उदाहरण दिया, बीज रूप बाप से कनेक्शन रखो तो विकारों का बीज क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। और जो जला हुआ, जला भुना बीज होता है, उससे कुछ उगता है क्या, नहीं। तो अपनी जो कमी है, जो कमजोरी है, जो खामी है, जो इम्परफेक्शन है, जो डिफेक्ट है, जो फ्लॉ है, जो विकार है, जो संस्कार है, जो विकल्प है, जो कमजोरी है, लंबे समय से सब कुछ करने के बाद नहीं जा रही है, उसको देखना, वो बीज है। और अमृत वेला, बीज रूप बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात संग में रहना, साथ रहना अर्थात अलग अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, साथ रहना अर्थात सीधा बीज पर आक्रमण, डाल तालियां नहीं काटनी पड़ेगी। बीज रूप बाप से बीज को भस्म कर दो, वो जो विकार है, वो जो संस्कार है, वो जो कमी है, वो एक बीज है और इधर से बाबा बीज रूप है, इसकी किरणें आ रही है और उसको भस्म कर रही है। सीन क्रिएट करना है, विजुअलाइजेशन, देखना है उसको, उसकी किरणें आई, आग का गोला आ रहा है और इसको भस्म, और रोज देखना है तो कमी, वो कमजोरी, वो विकार, वो संस्कार, वो एडिक्शन, वो लत, वो आदत जो सब कुछ करने के बाद नहीं छूटती, वो योग से छूटेगी, इस प्रयोग से छूटेगी, इस विजुअलाइजेशन से छूटेगी। मानस चित्र बनाना है, उसमें कलर भरने, देखने कलर से कि वहां पर ट्रांसलाइट बाबा है और वहां से किरणें आ रही है, बीज पूरा नष्ट हो रहा है, ऐसा नष्ट कि अब वो वापस उससे वंश अंश कुछ नहीं निकलेगा। तो ये प्रयोग करना है, कितना अच्छा प्रयोग बताया है। तो माया जीत सेवा केंद्र प्रसिद्ध हो, ऐसा कहा बाबा ने, सभी चैतन्य म्यूजियम बन जाए, ये माया जीत आत्माओं का चैतन्य म्यूजियम है, ऐसा सब कहे। विदेशियों से मुलाकात, अलग अलग ग्रुप से मिल रहे हैं, तो सदा साथ रहना, सदा मर्यादा की लकीर के अंडर रहना, सरेंडर स्थिति में रहना, समर्पण का भाव, सब कुछ उसका है। एक प्रसंग दिखाया है कि कृष्ण और अर्जुन आते हैं, कृष्ण अर्जुन बहुत थका है, वो कहता है मैं थोड़ा आराम करता हूं, आराम कक्ष में जाके आराम करने लगता है। उधर कृष्ण के भोजन का समय हो गया होता है, रुक्मिणी कहती है मैं जरा उसको बुला के लाती हूं। अर्जुन को देखती है तो अर्जुन सोया है, पर उसके रोम रोम से एक ही शब्द निकल रहा है, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद, और वो भी वहां पर मगन हो जाती है। दिखाए नारद जी आते हैं, वो भी आते हैं, क्या वो अब तक क्यों नहीं आए, भोजन ठंडा हो रहा है, पर वो जब देखते हैं रोम रोम से कृष्ण निकल रहा है, वो भी वही जम जाते हैं। वो सत्यभामा आती है, वो देखती है अब तक क्यों नहीं आए, क्या हुआ, देखती है ये दोनों मगन है, वो खुद भी मगन हो जाती है और वो सोया पड़ा है। कृष्ण खुद ही आते, व्हाट इज द प्रॉब्लम, तब अर्जुन को देखते हैं और तब कहते हैं इसीलिए ये मुझे इतना प्रिय है, प्रतिजानी प्रियोसी में, ये मुझे बहुत प्रिय है। मन मनाभव मध्याची मद भक्तो माम नमस्कुर, हे अर्जुन मेरा गुणगान कर, मेरे शरण में आ, मुझे नमस्कार कर, मामे वैश्यसी, मेरा ये वचन है, सत्यम प्रतिजानी प्रियोसिमी, ये मेरा तुझको वचन है कि तू मेरी शरण में आ जा, क्योंकि मैं तुझे बता रहा हूं, क्योंकि तू मुझे बहुत प्रिय है, और तू भगवान को प्रिय वो है जिनके रोम रोम में वो बसा है, और कुछ है ही नहीं चिंतन, दिन रात एक ही संकल्प है उसकी प्रत्यक्षता, दिन रात बुद्धि में केवल ज्ञान ही गूंजता है अंदर ही अंदर, और जहां पर ज्ञान नहीं गूंजता वहां संसार गूंजता है, संसार की आवाजें, इसके पास ये है, उसके पास वो है, उसने वो खरीदा, हमारे पास कब आएगा वो, इनको सब मिल रहा है हमको क्यों नहीं मिलता, इसी गम में और इसी दुख में रहेंगे। हरेक को वही मिल रहा है जो मिलना चाहिए, ड्रामा में गलती नहीं हो सकती, हम तो केवल इस जन्म का देख रहे हैं, पर ड्रामा में जो हो रहा है वो 63 जन्म की जो गठरी है हर एक अपने सिर पर उठाए कर्मों की, उस अनुसार भोग रहा है। माया जीत कब बनेंगे, पहला माया को पहचानना है, माया के हर रूप को पहचाना है, माया महाठगनी हम जानी, क्योंकि माया बहुत चालाक है, हर दिन नया रूप रचती है, आज जिस रूप में कल किसी और रूप में, हर दिन नया रूप है उसका, नित्य नया रूप, कितनी नवीनता है उसमें, कितनी परख शक्ति है उसकी, कितनी पावरफुल है, और कभी हार मानती है क्या, हम तो हार मान जाते हैं, एंटरटेनिंग भी है, नए नए रूप से आती है, बहलाती है, फुसलाती है, फंसाती है, प्यार करती है, प्रलोभन देती है, गोदी में सुलाती है, कहती है सो जा राजकुमारी, सो जा राजकुमारी। हम कहते हैं उठते, वो कहती है कुछ नहीं, सो जाओ, सब ठीक चल रहा है। उधर से मुरली की आवाज आती है, मुरली की कोई श्रीमत, वो कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, हवा थी बस, खिड़की बज रही थी, तुम सो जाओ। प्रलोभन, सब ठीक चल रहा है। माया बार बार बताती है, बाकी आत्मा को तो आवाज आती है परमात्मा की बार बार, कुछ कुछ कहता है वो, परंतु माया फिर सुला देती है, फिर सो जाते हैं, फिर पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। चार दिन किया एकदम घनघोर तपस्या, सुबह 2 बजे वाली, और बाद में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, कुछ नहीं मिला, जिसको करना है करते रहे। तो माया को पहचानना, माया के सूक्ष्म रूप को पहचानना, जानना, समझना कि इस रूप में भी माया आती है, और माया आ गई और हार भी अगर हो जाती है तो उससे फिर सीखना है अगली बार के लिए। तो इस बार हार हुई है, माना, एक्सेप्टेड, क्योंकि ये रूप हमको पता नहीं था उसका, ये तो एकदम नया रूप था। सारा ज्ञान होने के बाद में भी हार हुई, अब उसे सीखना है। माया इज द बेस्ट टीचर। उसके बाद माया को पहचानना, माया से सीखना, श्रीमत के अंदर रहना, मर्यादा का उल्लंघन न करना, बाप के साथ रहना, ये सारी चीजें बताई है। ये अगर होगा तो क्या बन जाओगे? माया जीत। ये माया जीत सेवा केंद्र प्रसिद्ध हो, जैसे मोहजीत राजा की कथा है, वैसे क्या हो जाए? माया जीत। और जो छोटे हैं, नए नए सेंटर्स खुले, उनके लिए क्या कहा? टेम्पा, टेम्पल। और जो छोटे हैं वो बाप के नजदीक है, जो नए हैं वो नजदीक है। और विदेशियों को और क्या कहा? कि ये नहीं सोचो कि ये भारतीय है, हम विदेशी है, सब एक है, सब एक बाप के, एक रीति रस्म है सबके, एक स्वभाव संस्कार है। यही तो विशेषता, इतने संस्कार होने के बाद में भी सब एक है, एक परिवार में। बाबा ने कहा केवल पहचान के लिए कहते हैं ये विदेश की है, ये भारत की है। बाकी मधुबन वालों के लिए क्या कहा बाबा ने शुरुआत में? श्रेष्ठ स्थान पर बैठ के करते क्या है? मिलन देखते रहते, इतनी आत्माएं आ रही है, भगवान से मिलन मना रही है, पर है खुद एक श्रेष्ठ स्थान पर। ऐसा भी समय आएगा बाबा ने कहा। तो उसके बाद में राजा बनने की क्वालिफिकेशन किसको है? जो स्वराज्य अधिकारी है वो ही राजा बनेंगे। स्वराज्य अधिकारी अर्थात खुद का कंट्रोल, स्वयं पर कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल। कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, ये तीन पुरुषार्थ है। एक तो विकारों को जीतना है, दूसरा अपने ही कर्मेंद्रियों को जीतना है, वश में रहे, क्योंकि ये कर्मेंद्रिय, ये हाथ बहुत गुनेगार है, ये आंखें गुनेगार है, ये मुख गुनेगार है, ये कानों ने बहुत गुना किया है, ये पैरों की तो बात मत पूछो कहां कहां गए हैं, हर इंद्रिय ने एक एक गुना किया है। अब इन इंद्रियों को तपाना है, अग्नि से गुजारना है, परिपक्व हो जाए, तपस्वी हो जाए, कंट्रोल में आ जाए, वश में हो जाए सारी इंद्रिय, क्योंकि सबसे ज्यादा पाप इन इंद्रियों ने किए, इंद्रियों के माध्यम से आत्मा ने बड़े बड़े पाप। हिंदू धर्म में कहते हैं महापातक, क्रिश्चियनिटी में कहते हैं द कार्डिनल सिंस, इस्लाम में कहते हैं गुनाहे कबीरा। गुनाहे कबीरा अर्थात बहुत बड़ा पाप, जिसके लिए कोई कफारा, कोई पश्चाताप नहीं। तो ऐसे पाप आत्मा से हुए है। एकांत में बैठकर चिंतन, एकांत में बैठकर सोचना, ये हुआ क्यों, हुआ किस मजबूरी से, हुआ कौन सा दरवाजा खुला था, कौन सी खिड़की खुली थी, कौन सा वातायन, कौन सा रोशनदान, कौन सा झरोखा, वेंटिलेशन बंद करना है उसको, ताकि फिर से वो पाप ना हो। और पाप की परिभाषा रिडिफाइन करनी है, जिसको हमने छोटा समझ रखा है शायद वो पाप है। तो राजा कौन बनेगा, जो स्वराज्य अधिकारी, अर्थात तीन चीजें बताई, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल, दूसरा प्रकृति जीत, प्रकृति जीत, प्रकृति की हलचल हलचल में हमको न लाए, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तीनों मौसम में सेम पुरुषार्थ। बारिश है इसलिए पुरुषार्थ डाउन, ठंडी ज्यादा बढ़ गई है, अभी उठने की इच्छा नहीं होती है, सुबह सुबह अच्छा लगता है थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। प्रकृति अपनी जगह पर, पुरुषार्थ अपनी जगह पर, अनटच्ड, आज कहा ना निर्लेप स्थिति वरदान। तो राजा, उसके बाद में और क्या क्या कहा मुरली में, एक समय आएगा कि कहेंगे बस करो, पर वो रुकेगा नहीं। और पहचानने की आंख कैसी है तुम्हारी, बहुत तेज है। विदेशियों को कहा जो बाप को पहचान लिया, और तुम्हारी लगन बहुत है, ये दो चीजें बताई जो यहां पहुंच गए। एक जगह ये भी कहा कि घर बैठे भगवान मिला, कहीं जाना ना पड़ा, घर बैठे तुमको भगवान मिल गया, भाग्य तुम्हारे घर में आ गया, इसी आंतरिक खुशी में रहना है। तो ये जो बात कही, पहचानने की आंख, इसको शार्प बनाना है। और वो शार्प कैसे बनेगी, प्यूरिटी से। जितनी प्यूरिटी बढ़ती जाएगी, चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। अभी स्पष्ट नहीं दिखती क्योंकि अपवित्रता है, जो शुरुआत में बाबा का महावाक्य बताया, ब्राह्मण आत्माओं में असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति, और अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता। अगर बेचैनी, अगर अतृप्ति, अगर असंतुष्टता है, तो जरूर कहीं ना कहीं अपवित्र कर्म हो रहे, जरूर मन में हलचल है, जरूर किसी न किसी सूक्ष्म विकार का आकर्षण है। अपना डायग्नोसिस खुद करना है, विकारों का डायग्नोसिस करते आ जाए बस। जिसे हम प्रेम समझ बैठे, वो प्रेम तो था ही नहीं, वो तो काम था। जिसे हम प्रेम समझ बैठे, वो प्रेम नहीं था, वो मोह था, वो लगाव था। वरदान में क्या कहा, लगाव से परे, कोई लगाव नहीं, ना हम किसी को याद करें, ना कोई हमको याद करे। एक वैराग्य की निरंतर अवस्था हो अंदर से, सूक्ष्म वैराग्य। अगर ये पूछा जाए कि इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा कौन सी दो बातें चाहिए, सबसे ज्यादा तो दो ही चीजें, एक प्यूरिटी और दूसरी डिटैचमेंट, वैराग्य। क्योंकि हम अटैच हो जाते हैं, हर चीज से अटैच हो जाते हैं, जो चीज हम यूज करते हैं दो मिनट के लिए, दस मिनट के लिए, उसमें अटैचमेंट उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए यहां का कुछ भी मेरा नहीं, इंग्लिश में कहते हैं ऑल और नन फिलोसॉफी। ऑल और नन अर्थात सब कुछ मेरा है, और दूसरा मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा है, इसके लिए मुझे हर चीज की संभाल करनी है, कुछ भी मेरे द्वारा वेस्ट ना हो यज्ञ में। और दूसरा ऑल नन मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किससे अटैचमेंट रखूं, किसी बात से अटैचमेंट नहीं रख सकता, कुछ भी मेरा नहीं है यहां पर। इतनी आंतरिक सूक्ष्म डिटैचमेंट, बहुत ज्यादा डिटैचमेंट की अवस्था। जो जितना ज्यादा डिटैच्ड वो उतना अधिक शक्तिशाली, जो जितना अटैच वो उतना अधिक दुखी। वो अटैचमेंट व्यक्ति को हो सकता है, परिस्थिति को, कोई घटना को, कोई स्मृति को, या कोई टेम्पटेशन, कोई कल्पना, कोई फैंटेसी, कोई विकार, अपना डायग्नोसिस खुद करना है। बैठना है, पहले सिम्टम्स गिनाने हैं। मेडिकल में डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? पेशेंट को क्या हो रहा है? बुखार आ रहा है ठंड के साथ, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा ये है। क्या क्या हो सकता है? डीडी, डीडी अर्थात डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, वायरल फीवर हो सकता है, ये हो सकता है। ब्लड टेस्ट, ये आउट, ये आउट, ये रूल आउट, ये रूल आउट, हाँ ये है। ऐसा ही इधर करना है, अपने सारे सिम्टम्स गिनाने हैं, क्या क्या हो रहा है, किसी की याद आ रही है। हम आगे कह रहे हैं प्रेम, प्रेम के वश, किसी की याद आ रही, क्यों? सेवा वश। ठीक है, चलो सारे सिम्टम्स गिनाए, फिर उसके बाद में क्या हो सकता है, बीमारी परिणाम क्या है? परिणाम बहुत अच्छा है तो कोई बीमारी नहीं है, ठीक ठाक पुरुषार्थ। पर ठीक ठाक पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, योग में बैठते ही हलचल चालू हो जाती है सारी दुनिया भर की, अर्थात कुछ तो गड़बड़ है। इन्वेस्टिगेट, अब डायग्नोसिस, प्रेम तो नहीं है ये, क्योंकि प्रेम में हलचल तो होनी नहीं चाहिए, प्रेम तो ईश्वरीय गुण है, भगवान का स्वरूप है प्रेम, जरूर ये कुछ और है, इसमें एक्सपेक्टेशंस मिक्स्ड है, इसमें देहभान समाया हुआ है, इसमें लोभ है, इसमें क्रोध है, इसमें स्वार्थ है, अर्थात कुछ ना कुछ तो बीमारी है। फिर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस होने के बाद फिर ट्रीटमेंट, कौन करेगा ट्रीटमेंट? हम खुद, क्योंकि सारा किताबें हमने पढ़ रखी है, रोज सुनते रहते हैं, सब पता है, तो ये भी बात है, अपना डायग्नोसिस खुद करना है। ऐसे कैसे? खुद का डायग्नोसिस खुद करने वाले बच्चों को ऐसे, सदा संतुष्ट मणियों को ऐसे, स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को ऐसे, मायाजीत आत्माओं को ऐसे, ऐसे संतुष्टता को खजाना समझने वाले, संतुष्टता को श्रृंगार करने वाले ऐसे, संतुष्टता विशेषता को धारण करने वाले ऐसे, संतुष्टता परिवर्तन का दर्पण, परिवर्तन के दर्पण से दूसरों को भी परिवर्तित करने वाले ऐसे, मायाजीत बनकर माया को पहचानने वाले, दूर से ही पहले ही पहचान लेना, समय से पहले पहचान लेना कि ये माया है, और उससे स्वयं को बचा लेना, संभल लेना, ऐसे बच्चों को ऐसे, घबराने से मुक्त आत्माओं को ऐसे, धोखा खाने से मुक्त आत्माओं को ऐसे, ऐसे सीता नहीं बनने वाली आत्माओं को, कौन सी सीता नहीं बनने वाली? जो शोक वाटिका में चली जाए, जो पांच बातें बताई, सात बातें बताई, उससे मुक्त रहने वाली आत्मा को ऐसे, मर्यादा के अंदर रहने वाली आत्माओं को, सरेंडर स्थिति में रहकर माया को सरेंडर कराने वाली आत्माओं को, ऐसी सरेंडर सेरेमनी मनाने वाली आत्माओं को, ऐसे स्नेही बच्चों को, ऐसे दिल तख्त नशीन बच्चों को, ऐसे दिल वाले बच्चों को, ऐसे बाप से रूह रियान करने वाले बच्चों को ऐसे, ऐसे जो निर्बंधन है उसको बांधने वाले बच्चों को, जो वाणी से परे है उसको वाणी में लाने वाले बच्चों को। कभी बाबा ने कहा, इस समय बाप तुम्हारी मुट्ठी में है, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, इस समय बाप तुम्हारी मुट्ठी में, तुमने जेब में रखा है उसको। ऐसे बच्चों को चैतन्य म्यूजियम, चैतन्य मूर्तियों को ऐसे, माया जीत मोह जीत प्रसिद्ध सेवा केंद्र बनाने वाली आत्माओं को, सब एक है, एक रसम, एक बाप, एक परिवार, एक स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।
प्यारा प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यार में दादियों के समा जाइए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। भाग्य से दैवी परिवार प्यारा मिला, भाग्य से दैवी परिवार प्यारा मिला, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। वो निराकार आकार साकार का प्यार सब दादियां हम पे बरसा रही, प्रभु मिलन की लगन में मगन देख कर दिल ही दिल दादियां कितनी हर्षा रही, तब की जलती हुई राहों को छोड़कर शीतल शीतल से आंचल में आ जाइए, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। सबको शुभ कामनाएं हम देते चले, सबके दिल की दुआएं हम लेते चले, याद और सेवा के ही अब संकल्प हो, दिल से बाबा ही बाबा हम कहते चले, संगम युग का समय कितना अनमोल है, दादी जी संग सफल इसको कर जाइए, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यार में दादियों के समा जाइए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या